نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. 18वें पारे पे पहले जो पिछली दफ़ा की आयात हैं वो ज़रा देखिए. लास्ट टाइम कुछ दो सवाल थे जो आपसे किए गए थे. अल्लाह ताला ने आपको दो बातें पूछी थी. कुछ सोचा आपने इनका जवाब? एक तो आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने सवाल किया, कुल अदालिका खैरन, क्या ये बेहतर है या जन्नत खुल्द, और दूसरा आखिर में भी सवाल किया आपसे. अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करते हो? तो बात ये, हमने जैसे पहले पढ़ा था जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जो अजाब था जहन्नुम वालों के लिए, वो सुनना भी इतना तकलीफ़ दे है. और ऐसे ही है जैसे किसी को, यानी अगर तसव्वुर में लाएं इस चीज़ को, ऐसे लगता है जैसे किसी को बांध के अवन में डाल दिया हो और दरवाज़ा बंद कर दिया जाए. ज़रा सोचें, हमें 2-3 घंटे यहाँ पे बैठना पड़ता है तो थक जाते हैं, हालांकि बांधा किसी ने नहीं हुआ, लेकिन थकावट हो जाती है. तो इंसान को बांध दिया जाए, वही इट सेल्फ उसके लिए एक अजाब होता है. और कहाँ ये कि बांध के फिर उसके बाद अवन में डाल के और दरवाज़ा बंद कर दिया जाए. और फिर तकलीफ भी ऐसी है, अजाब भी ऐसा है कि बजाय कम होने के या बजाय उससे यूज टू होने के, जैसे एक बाज़ लोग कहते हैं उसके बाद इंसान वहां पे यूज टू हो जाएंगे जी, तो उसमें तो और इजाफा होता जाएगा. इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इंसान अल्लाह की पनाह मांगे, स्पेशली जब गर्मी के दिन हो, शदीद गर्मी हो, उस वक़्त इसकी बहुत ज़्यादा पनाह मांगनी चाहिए. जब भी आपको गर्मी लगे ना, तो इसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए. इसी तरह आपकी तरफ आजकल सर्दियों के दिन है, तो सर्दियों में भी वहाँ पे आपको पता है कि जहन्नुम का एक अजाब सर्दी का भी है, उससे भी पनाह मांगनी चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी का जब दिन होता है, तो अल्लाह ताला अपना कान और अपनी आँख आसमान वालों और ज़मीन वालों की तरफ लगा देते हैं. तो जब कोई बंदा कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज़ कितनी सख्त गर्मी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्री नारी जहन्नम, के अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाते हैं, मेरे बंदों में से एक बंदे ने तुझसे मेरी पनाह तलब की है, मैं तुझे गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसको पनाह दे दी. और जब शदीद सर्दी का दिन होता है, तो अल्लाह ताला अपना कान और अपनी आंखें आसमान वालों और ज़मीन वालों की तरफ लगा देते. जब कोई बंदा कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, आज कितनी सर्दी है, हम तो बस इतना ही कह के रुक जाते हैं ना, तो जब वो बंदा आगे कहता है ना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन बर्दी ज़महरीर, उस जगह का नाम ज़महरीर है असल में, तो जब वो कहता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन बर्दी, अल्लाह मुझे ठंडक से जो सर्दी है ज़महरीर की, उससे पनाह देना, तो अल्लाह ताला जमहरीर से फरमाते हैं बेशक मेरे, ये क्योंकि एक ये तबका है जहन्नुम का, एक तबका, एक सेक्शन है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे तेरे जमहरीर से पनाह तलब की है, बस मैं तुझे बना गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने उसको पनाह दे दी. तो ये दोनों ही अजाब ऐसे हैं, हम तो सिर्फ यानी इतना ही बोल देते ना, बहुत सख्त गर्मी है, हाय आज ठंड कितनी है, कितनी दफ़ा हम ये कमेंट देते हैं ना, आज कितनी सर्दी है, लेकिन आगे भी बोलना है, जब आपको सर्दी महसूस हो तो आगे ज़रूर ये कहें अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन बर्दी ज़महरीर. तो इस दुआ को अपने पास लिख लें, और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन नार, ये तो सभी को आती है, तो अगर अगर नहीं ये भी आती अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन हर्री नारी जहन्नम, तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन नार ही कह दिया करें. तो इससे फिर क्या हमारी, जब ये आपने पढ़ा तो उस बात सोचें कि कितनी हमारी दुआ होनी चाहिए इस सिलसिले की कि हम अपने आप को आग से बचाने के लिए अल्लाह से खूब खूब दुआएं करें और अपने अंदर खुदा खौफी पैदा करेंगे, तो तभी ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत ज़्यादा बेहतर है, क्या इनको जन्नत चाहिए, क्या ये ज़्यादा अच्छा है या वो अजाब ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसका वादा तो मुत्तकीन से है, तो मुत्तकी बनना पड़ेगा। और फिर जो आखिर में अल्लाह ताला ने पूछा ना अतस्बिरून, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं पे भी आप जिन भी हालात में, बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारी बहनें ऐसी सिचुएशंस में होती हैं कि इंतहाई तकलीफ होती है, तो कोई भी आपके हालात बदलने की कुदरत नहीं रखता ना। हालात तो अब कुछ ऐसे लोगों के मसाइल होते हैं कि जो चेंज नहीं हो सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो बजाय इसके कि हम हर वक्त रोएं धोएं, हर वक्त गिले शिकवे करने में वक्त ज़ाया करते रहें, मैंने जैसे आपको बताया था कि हर एक दूसरे के लिए इम्तिहान है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार ही हों, गैर लोग भी हो सकते हैं जो आपके लिए इम्तिहान हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, और बहुत प्यारे रिश्ते भी हो सकते हैं। अब माँ और औलाद का रिश्ता कितना प्यारा रिश्ता है, मगर वो भी एक इम्तिहान का रिश्ता है। तो ज़रूरी नहीं कोई ऐसा ही रिश्ता हो जिसमें जो आपको पसंद नहीं है, आप कहते हैं जो पसंद नहीं होता, आप कहते हैं ये मेरे लिए इम्तिहान बन गई है, लेकिन बहुत प्यारे रिश्ते भी इम्तिहान ही होते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने देखना है कि आपने क्या करना है, और ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इम्तिहान उस वक़्त हो जाता है जबकि हमारे आपस में मिजाजों में फ़र्क होता है, जबकि हमारी आपस में सोच में फ़र्क होता है। कभी एक घर में रहने वाले शौहर बीवी के दरमियान सोच का इतना ज़्यादा फ़र्क होता है, सास बहू के दरमियान होगा, नंद भावज के दरमियान हो सकता है, तो इन रिश्तों में अब रिश्तों को तोड़ के तो नहीं जी सकते हम, क्या करना है? अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? सब्र ना भी किया तो सिचुएशन ने बदलना तो नहीं है, लेकिन सब्र कर लिया ना तो अजर भी मिलेगा और जिंदगी में आप सुखी भी रहेंगे। सब्र क्या चीज है? सब्र है बर्दाश्त करना, सह जाना, जाने देना। हम जाने नहीं देते ना बात को। हर इंसान में कमियां कोताहियां होंगी, हर इंसान में ड्रॉबैक्स होंगे, शॉर्टकमिंग्स होंगी, लेकिन हमें उनके साथ रहते हुए, साथ चलते हुए, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलते चले जाना है, यही सब्र है। और सब्र आखिरी लम्हे तक करना है, ये ना कभी कहें कि बहुत सब्र कर लिया हमने, अब इतने साल सब्र कर लिए, अब नहीं सब्र होता, नहीं, क्या पता ज़िंदगी इतनी नहीं रह गई, क्या पता अब और थोड़ी जिंदगी रह गई हो और आप ये कह के अपना सबर का पिछले का भी अजर गंवा दें। तो एक तो ये हो सकता है आप लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं, बिल्कुल किसी से मिलें जुलें ही नहीं, तो तब भी आपके, मैंने आपको बताया था कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, मसलन औलाद का रिश्ता है, शौहर का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बहन भाइयों का रिश्ता है, उनको तो तोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते ना, वो तो साथ चलेंगे ही। तो आप बाकी सबसे कट ऑफ भी हो जाएं तो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जिनके बगैर नहीं आप रह सकते, तो वो तो बदस्तूर आपके लिए इम्तिहान बने रहेंगे। तो बाकी लोगों के साथ भी अगर आप मिलें जुलेंगे, तो जैसे हदीस में कि जो मोमिन लोगों से मिलता जुलता है और उनकी तरफ से जो आने वाली तकलीफें होती हैं उन पे सब्र करता है, वो बेहतर है उससे जो लोगों से मिलता जुलता नहीं है और ना ही उनकी तरफ से आने वाली ईज़ाओं पे सब्र करता है। तो आप बेहतर में शामिल होना चाहते हैं, आप अजर लेना चाहते हैं, इम्तिहान है लेकिन इसका अजर भी है, और इम्तिहान से बच नहीं सकते, प्यारे रिश्तों के जरिए भी इम्तिहान ही है। तो जहां पे भी हम हैं, जिस भी यानी रिश्ते में हम बंधे हैं, चाहे हम हमसाए हैं, चाहे हम दोस्त हैं, कहीं माँ हैं, कहीं बहू हैं, कहीं सास हैं, कहीं बीवी हैं, ये सारे रिश्ते सब्र मांगते हैं। आप कहते हैं ना सिर्फ माँ होने के लिए बड़ा सब्र चाहिए, लेकिन आप देखें गौर करें तो हर रिश्ते में सब्र चाहिए, किसी रिश्ते में भी इतना ज़्यादा दूसरे को यानी जिच ना कर दें कि वो भी सब्र का दामन छोड़ दे और एक आप उसको इतना ना आजमाएं किसी भी रिश्ते को। तो ये दो सवालात थे जिन पे आपने गौर करना था इस हफ्ते में, और उम्मीद है कि आपने किया होगा और आपको जवाब मिले होंगे। तो वंस एंड फॉर ऑल हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। याद रखें, जैसे हमें पिछली क्वेश्चन का आपको कहा, जन्नत का रास्ता एक तरफ है और जहन्नम का बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों मंजिलें डिफरेंट है ना, कोई कंपैरिजन है दोनों में? कोई मुमासलत है दोनों में? बिल्कुल नहीं ना। एक सख्तरीन अजाब है, दूसरा नेमतों भरी जगह। अब जब ये मंजिलें इक्वल नहीं है तो इनके रास्ते भी सेम नहीं है, रास्ते डिफरेंट है। अब मिसाल के तौर पे आपको कोई ये कहे कि जी एक तरफ एक रास्ता है, उसमें बड़े मज़े हैं और बहुत ही फन प्लेसेस हैं और बहुत कुछ है और बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन उसके एंड पे जाके ना, और वो कौन बता रहा है आपको? जो उस जगह का गाइड है, वो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता है। अब आप गाड़ी लेके चली हुई हैं, वो आपको बताता है जी आप अगर लेफ्ट मुड़ जाते ना, बहुत मज़ेदार रास्ता है, बहुत ही अच्छा है, बड़ा स्मूद है और बहुत फन है उसमें, लेकिन एंड में जाके क्या है, एक बहुत गहरी खाई है। आपने कभी देखा होगा कि चलते चलते गाड़ी ऐसी जगह पे पहुंच जाती है, वहाँ पे आगे बहुत नीचे खाई होती है, अगर वहाँ पे ब्रेक ना लगे तो गाड़ी नीचे चली जाती है। तो वो आपको बताता है कि वहाँ पे इतनी गहरी खाई है और मुड़ने का रास्ता कोई नहीं है, फिर वापस नहीं मुड़ सकते। और दूसरा रास्ता है, बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, अंधेरे भी हैं उसमें और बहुत बम्प्स भी लगेंगे, जंप्स भी लगेंगे, सड़क भी जगह जगह से टूटी फूटी भी होगी और बड़ी तकलीफ होगी आपको, लेकिन एंड में ना उसके बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी ऐसी जगह है, उसमें बहुत कुछ है, बड़ी नेमतें हैं, बहुत मज़े हैं, खूब फन है, और वहाँ से भी गाड़ी वापस नहीं आ सकती। आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, राइट वाला या लेफ्ट? आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, रास्ते में थोड़ा बहुत अगर मुश्किल आई भी, लेकिन एंड में तो बहुत अच्छा है ना, और इसमें वहाँ पे खाई में गिर गए तो क्या फ़ायदा फिर सारे रास्ते, अगर फन मिल भी गया तो। तो यही बिल्कुल जन्नत और जहन्नुम के रास्तों का, जिसका अल्लाह ताला ने आपसे सवाल किया, तुमने किस तरफ जाना है, तुम कौन सा रास्ता लेना चाहते हो, तुम्हें ये जहन्नुम में जाना है, ये बेहतर है या वो जन्नत बेहतर है? तो सवाल आपके सामने रख दिया गया, और जवाब देने से इतनी आसानी ज़रूर हो जाएगी कि आपने डिसाइड कर लिया, फिर उसके लिए कमर बांध सकते हैं। और जिसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि किस तरफ को जाना है, वो तो वहीं खड़ा ही रहेगा, ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी, उसको पता ही नहीं है किधर को जाना है, वो लॉस्ट है। तो वो गाइड जिसने बताया है ना, वो हमारा रब है, उसने हमें बताया, जो हर रास्ते को जानता है कि कौन सा रास्ता सही है जिसमें हमारे लिए बेहतरी है। अब हमने जहाँ बात ख़त्म की थी वहाँ पे यही था ना कि जो काफिरों के एतराज़ात थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं, बाज़ारों में चलते फिरते हैं और ये है खाते पीते हैं तो हमारे जैसा ही इंसान है, इसमें क्या कोई ख़ास बात है, ना इसके साथ कोई फरिश्ते हैं, ना इसके साथ पास कोई ख़जाने हैं, कोई बाग होता, कोई कुछ होता, यानी क्योंकि इंसानों की नज़रों के अंदर हमने आज के वक्त में यही अपने, आज भी यही स्टैंडर्ड्स हैं, पहले भी यही स्टैंडर्ड्स थे, कि किसी के पास माल होना ये बताता है कि ये काबिले इज़्ज़त है, या ये ही है जिसके ऊपर कोई बहुत अल्लाह का करम है, जिसके पास माल नहीं है तो इसका मतलब है पता नहीं ये अल्लाह की नाराज़गी ही है इसके ऊपर, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है, और यहाँ पे भी कुछ और उनकी बातें कही गईं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाना, और कहा उन लोगों ने जो उम्मीद नहीं रखते हमारी मुलाकात की। यहाँ पे ये नहीं कहा गया काफिर कहते हैं, कहा गया जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, जिनको ये होप नहीं है, जिनको ये यकीन नहीं है कि उन्होंने आखिरत में अल्लाह से मुलाकात करनी है, वो क्या कहते हैं?
لولا انزل علینا الملائکہ، تو کیوں نہیں ہمارے اوپر کیوں نہیں فرشتے آ جاتے؟ ایک اس کی وجہ کیا تھی، ایک اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ فرشتے اس کے پاس وحی لے کر آ رہے ہیں اور ہم ہمارے جیسا ہی انسان ہیں نا، تو ہمارے پر کیوں نہیں آ جاتے فرشتے، ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں؟ یا پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے آ کے خود ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم ان کو نبی مانیں گے، ورنہ نہیں ہم نے ماننا. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو کیا ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ دو ڈیمانڈز ہیں جو اس آیت میں، ایک کیوں نہیں ہمارے پر فرشتے نازل ہوتے، دوسری او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے، ہم اپنے رب کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دکھایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آ کے بتائے کہ یہ میرا رسول ہے تو پھر ہم مانیں گے. نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بے باک اور کتنی یعنی ایسی بات ہے کہ جس سے انسان لرز جاتا ہے کہ کوئی اتنی بے باکی سے یہ کہے کہ مجھے دکھاؤ رب، دکھاؤ تو میں مانوں گا، ایسے نہیں میں نے ماننا. اور یہ کون کر سکتا ہے، یہ ایسی ڈیمانڈ کون کرے گا جس کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہ ہو، جو آخرت کا منکر ہو؟ کیونکہ جس کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے نا، وہ ایسے جاہلانہ سوالات نہیں کرتا اور ایسی ڈیمانڈز نہیں کرتا، اس کی جرات ہی نہیں ہو سکتی. وہ تو بیچارہ ہر وقت کانپتا ہی رہتا ہے، ہر وقت فکر میں ہی رہتا ہے، اس کو کہاں ایسی چیزوں کی فرصت ہے. اور آج کل بھی جو خود کو بڑے لبرل لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر اسلام کے اوپر اتنے زیادہ بحثیں کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کرتے ہیں، یہ کیوں ایسے اور وہ کیوں ایسے، یہ بھی اس بات کا سائن ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں آخرت کا سچا یقین نہیں ہے. جس کو یقین ہونا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ڈر جائے گا، اس کے منہ سے یہ باتیں نکلیں گی ہی نہیں، اس کی جرات ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد استكبروا في انفسهم، اور البتہ تحقیق انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں. اصل بات یہ ہے، اپنے آپ کو یہ بہت بڑی چیزیں سمجھتے ہیں، جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ دکھایا جائے، ہمیں خدا کو دکھایا جائے، فرشتے ہمارے پاس آ جائیں اور آ کے ہمیں بتا دیں تو ہم مان جائیں گے. اب آپ دیکھیں تو یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا، بہت بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے نا، وہ تو پھر کہتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال، وہ تو یہ کہتا ہے نا. یہ محاورہ سنا ہوگا آپ نے کہ میں کہاں اور کہاں میری کیا اوقات ہے کہ میں یہ بات بولوں. پتہ ہے نا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سردار گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، انہوں نے جا کے وہاں پہ کہا تھا نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھایا جائے، تو پھر حشر ان کا کیا ہوا تھا، ریزہ ریزہ ہو گئے تھے، اسی وقت مر گئے تھے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا تھا اللہ کو دیکھنا، مگر خیر انہوں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے تو یقین کریں گے، وہ آ کے ہمیں بتایا، اس طرح کی بدتمیزی نہیں کی تھی، یہ ان کا شوق تھا، دیدار کا شوق، وہ ایک بالکل الگ بات ہے کہ اللہ ہمیں شوق ہے تجھے دیکھنے کا، لیکن پھر بھی تاب نہ لا سکے ایک تجلی کی بھی. تو اس دنیا میں تو کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا ان آنکھوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں نا، ان کی ڈیمانڈز دیکھو، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں تکبر بھرا ہوا ہے. وَآتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی، یعنی یہ تو حد سے گزر گئے ہیں. تکبر ہے ایک تو ان کے اندر، خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور پھر کسی حد پہ نہیں رکے ہوئے. دیکھیں حدود انہوں نے کراس کر لی ہیں، حدیں پار کر لی ہیں. آپ دیکھیں یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور اہل مکہ جو ہیں وہ الزامات کی بارش کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف وہ ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خیر خواہی، محبت، صبر کا سمبل. اگر دونوں گروہوں کے درمیان آپ دیکھیں نا، تو ظلم کرنے والا کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کوئی ذاتی ان کو تو کسی نے نقصان پہنچایا تھا، نہ ان کا مال کسی نے ہتھیا لیا تھا، نہ ان کی عزت پہ حرف آیا تھا، کسی اعتبار سے ان کو نقصان تو نہیں کچھ دیا تھا، پھر ان کو دشمنی کیوں تھی؟
दुश्मनी की वजह क्या थी? सिर्फ ये कि अगर हम इस बंदे की बात मान लेंगे तो हमें छोटा होना पड़ेगा। हम छोटे कैसे हो जाएं? और लोगों की साइकोलॉजी एक ही है, चाहे आज हो चाहे उस वक्त। जब दावत देने वाला दावत देता है, जमीन के किसी खित्ते में भी, तो सेम ही रिजल्ट होते हैं। कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोगों में तकब्बुर इतना भरा होता है वो किसी की नहीं मानना चाहते, अपनी जात अपनी राय अपनी बात को सबसे ऊपर समझते हैं, वो इनकार कर देते हैं। और कुछ सिर्फ इनकार ही नहीं करते, वो हद से बढ़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे इनकी दुम पे पाऊं आ गया। जब दुम पे पाऊं आता, देखा क्या रिएक्शन होता है किसी का। तो अहले मक्का जो थे ना, वो इतने अजियत में पड़े हुए थे कि ये हमें बातें क्यों बताई जा रही हैं। अब देखें, शैतान ने भी तकब्बुर किया था। सबसे पहला उसका जो जुर्म था ना, वो यही था ना, उसने कहा था अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं। और फिर देखें इस तकब्बुर ने इसको कहां तक पहुंचा दिया। ये जो बड़ा बनने की ख्वाहिश है और खुद को बड़ा समझना, खुद को कोई चीज समझना, और कभी कभी इंसान को खुद भी नहीं पता होता कि वो दिल ही दिल में अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहा होता है। या तो खानदानी तौर पे बहुत बड़े, या जो शैतान इंसान को, जो नेक लोग होते ना, उनको किस तरफ से आके पकड़ता है, उनके दिल में ये ख्याल डालता है कि तुम बड़े ही नेक हो, थोड़ा बहुत भी कुछ काम कर लिया, कुछ कुरान पढ़ लिया, कुछ तुम बड़े नेक हो, तुम्हारे जैसा कोई नेक हो सकता है? और आपको पता भी नहीं होता, चोर दरवाजे से वो आ जाता है और आपके दिल में ये ख्याल डाल देता है कि बस दुनिया सारी तो इतनी बुरी है, ये सारे बड़े गुनाहगार हैं, और मैं तो पता नहीं कितनी नेक हूँ। ये ख्याल आया और इंसान डूबा। तकब्बुर है ही क्या? दूसरों को हकीर जानना, हक का इनकार और लोगों को हकीर जानना। जब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं तो क्या होता है? फौरन आपकी नजर में सारे छोटे छोटे बोने नजर आने लगते हैं, छोटे छोटे बोने हो जाते हैं, सारे बहुत छोटे, मैं उनमें सबसे बड़ी, मैं इनमें सबसे आला, मैं इनमें सबसे नेक। किसी को अपनी खानदान तकब्बुर में डाल देता है, किसी को अपना स्टेटस डाल देता है, किसी को अपना हुसन डाल देता है, किसी को अपना इल्म डाल देता है, और किसी को अपनी नेकी डाल देती, किसी को अपनी इबादत डाल देती तकब्बुर में। तो तकब्बुर के भी तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें इंसान को, हर एक को डिफरेंट चीज़ तकब्बुर में डालती है। हम देखें हमारे अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं छुपा हुआ? क्योंकि जो मुतकब्बिर होगा ना, एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर दिल में आ गया ना कि मैं कोई चीज़ हूँ, मेरे अंदर कोई नेकी है, मेरे अंदर बहुत तकवा है, मेरे अंदर फलां चीज़ बहुत, तो राई के दाने के बराबर भी हुआ, जन्नत में नहीं जा सकता। अपने आप को हमेशा झुका हुआ रखें, अपनी बड़ाई के एहसास में ना रहें, मैं बड़ी, मेरा इल्म बड़ा, मेरी जात बड़ी, मैं किसी से क्यों कुछ सीखूं, मैं तो खुद ही इतनी बड़ी चीज हूं, ये तकब्बुर ही तो है। मैं क्यों किसी की बात में आऊं, मैं क्यों किसी की राय को अहमियत दूं, मेरी तो अपनी राय बहुत अहम है, मैं क्यों किसी का मशवरा मानूं, मैं तो खुद ही इतनी अकलमंद हूं, ये सब तकब्बुर ही तो है। ये जो मैं है ना, ये मैं, यही तकब्बुर है। तो ये वो लोग कर रहे हैं जो आखरत की मुलाकात का यकीन नहीं रखते, उम्मीद नहीं रखते। और दूसरा इसका माना ये भी है कि खौफ नहीं रखते ना, जो मैंने आपको बताया रिजा का एक माना क्या है, खौफ, कि इनको खौफ नहीं है, इनको डर नहीं है। अगर डर होता तो ऐसी बात ना करते। हम अपने अंदर झांक के देखें, हमें कितना डर है कि अल्लाह से मुलाकात होनी है। क्या हर काम करते हुए ये बात दिल में होती है कि मेरा रब मुझे देख रहा है और मुझे इससे मुलाकात करनी है? ये अगर यकीन हो ना तो एकदम दिल कांप जाता है। ये यकीन ही तो खत्म हो चुका है।
और आप देखें ये रकू ना बहुत ही अहम रकू है इस सूरह का, सूरह फुरकान का, ये जो पहला 19वें पारे का जो पहला रकू है, इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बातें हैं। तो अगर हम अंदर झांक के देखें अपने, असल बीमारी क्या है, ज़ात की बड़ाई का एहसास, इसी वजह से ये यकीन भी नहीं करते। बात ये है, ये कहते हैं ना हमारे ऊपर फरिश्ते आए, अगर फरिश्ते भी आ जाएं तो वो भी इंसानी शक्ल में आएंगे ना, फरिश्तों की भी ताब नहीं इंसान ला सकता, फरिश्तों को भी नहीं देख सकता, तो वो इंसानी सूरत में अगर आए तो फिर नहीं ये मानेंगे, फिर कहेंगे ये तो फरिश्ता है ही नहीं, ये तो इंसान है, और अगर अपनी असल सूरत में आ जाए तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो आखिरत का इनकार करने वाले, उसकी उम्मीद ना रखने वाले, दरअसल अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं, इतनी बड़ी चीज खुद को समझते हैं कि अल्लाह को भी अपने सामने देखना चाहते हैं कि हम देखेंगे फिर हम मानेंगे, जब देखा नहीं है तो फिर क्यों माने। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है तुम देखना चाहते हो, यौमा यरऊन अल मलाइका था ला बुशरा यौमा इज़िन लिल मुजरिमीन, जिस दिन दिख गए ना फरिश्ते, वो कोई मामूली दिन नहीं होगा, उस दिन फिर कोई खुशखबरी नहीं होगी मुजरिमों के लिए। हाँ मतलब हुआ, क्योंकि वो दिन क्या है, वो दिन है जो मौत का दिन है। देखिए ऐसे जिंदगी में तो फरिश्ते नहीं कभी भी नजर आ सकते ना, तुम्हें फरिश्ते देखने हैं, तो जिस दिन फरिश्ते नजर आ गए ना, फिर देखना वो दिन कैसा होता है, फिर उस दिन कोई खुशी की बात नहीं होगी तुम्हारे लिए की, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिस पे तुम बड़े खुश हो सको। ला बुशरा, उस दिन कोई मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं है, क्योंकि वो दिन फिर कैसा होगा, तुमने तो सारी जिंदगी इस चीज का ही इंतजार किया ना कि हम मानेंगे उस वक्त जब फरिश्तों को देखेंगे। तो अब देखो ठीक है, फरिश्तों को देख लिया, लेकिन सॉरी अब तो टाइम ओवर हो चुका है, इम्तिहान का वक्त खत्म हो चुका है, अब तो बेल हो चुकी, अब तो सारा खेल ओवर, जिंदगी की मोहलत खत्म, अब तो कोई बुशरा नहीं तुम्हारे लिए। तो उस दिन क्या कहेंगे, वो यकूलून हिजर महजूरा, उस दिन कहेंगे बंद किए जाओ, बंद किया जाना, पनाह पनाह। यानी असल बात यह है कि जब जैसे हम लोग होते ना, जब हमारे सामने कोई मुसीबत, कोई ऐसी एकदम परेशानी आती है, तो हम कहते बचाओ बचाओ, तो अरबों में क्या होता था कि जब कोई मुसीबत देखते थे तो ऊंची आवाज में कहते थे हिजरम महजूरा, यानी पनाह पनाह, कि हमें पनाह चाहिए। तो ये इनका एक यानी मुहावरा समझ लें कि हिजरम महजूरा बोलते थे, तो उस दिन तुम कहोगे हाय पनाह चाहिए पनाह चाहिए। तो क्या होगा इनके साथ जिस वक्त ये फरिश्ते देखेंगे, फरिश्तों को देखेंगे, ये लोग जो आज नहीं मान रहे ना, कई आज भी एथिस्ट हैं जो बड़े बुलंदो बांग ये बोलते हैं कि किसी ने खुदा को देखा है भला, जब देखा ही नहीं तो माने कैसे। अब आपको कोई कह दे, अब आप क्या जवाब देंगे, वो कहते हैं हमें दिखा दो तो फिर हम मान जाएंगे, तुमने देखा है क्या, नहीं देखा तो कैसे मान रहे। तो ईमान तो है ही ईमान बिलगैब, जिस दिन देख लिया उस दिन ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो नहीं ईमान अल्लाह को चाहिए, ईमान है ही गैब पर ईमान। इसीलिए तो जब कुरान शुरू ही होता है वयुमिनून बिलगैब कहा गया, ईमान रखते हैं गैब पे, ये गैब पे ईमान जो रखने वाले हैं ना, वो ही आगे इस कुरान से भी हिदायत पा सकते हैं। जो गैब पर ईमान ही नहीं रखते, जिनको नहीं ईमान है कि अल्लाह है, जिनको नहीं ईमान के फरिश्ते हैं, जिनको नहीं ईमान है कि हाँ अल्लाह के रसूल आए थे, तो वो कैसे इसे हिदायत पा सकते हैं। ये लोग जब फिर उनको देखेंगे तो इनका हाल क्या होगा, अल्लाह ताला ने सूरह अनआम में फरमाया आयत नंबर 93 में, वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौत, काश तुम जालिमों को इस हालत में देख सको जब वो जानकनी की तकलीफ में मुब्तला होते हैं, तो क्या होता है, वल मलाइका तु बासी तु अईदीहिम, फरिश्ते अपने हाथ फैलाते हैं इनकी तरफ, हाथ बढ़ा बढ़ा के कहते हैं इनको अखरिजू अनफुसकुम, निकालो अपनी जाने, लाओ अपनी जाने आप निकालो, अल्यौम तुजज़ऊना अज़ाब अलहून, आज तुमको अज़ाब अलहून रुसवा कुन अज़ाब दिया जाएगा। जो तुम नाहक अल्लाह के बारे में कहा करते थे और अल्लाह की आयात के मुकाबले में जो तुम तकब्बुर किया करते थे, तो अब लाओ अपनी जाने। सोचे फरिश्ते खड़े में और जान निकालने के लिए आगे आगे हाथ बढ़ा रहे हैं, और फिर एक और जगह अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में आयत नंबर 50 में फरमाया, काश तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, ये जंगे बदर का वक्त है, तो वो इनके चेहरों और कूलों पर जरबे लगाते जाते थे और कहते थे, लो अब जलने की सजा का मजा चखो। और सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस क्या हाल होगा काफिरों का जिस वक्त फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारेंगे, मार मार के इनकी रूहें निकाली जाएंगी। यानी ऐसा अजाब होगा कि मामूली बात नहीं है। इनकी जान कैसे निकलेगी, मार मार के। और उस वक्त ये क्या कहेंगे फरिश्ते जब इनकी जानें कब्ज करने के लिए आएंगे, तो उस वक्त इनका क्या हाल होगा। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम पहले पढ़ चुके हैं, उस वक्त वो झुक जाते हैं, कहते हैं हम तो कोई बुराई नहीं करते थे, हम तो नहीं कुछ करते थे, मा कुना नअमलु मिन सू। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक और जगह पे आता है, हदीस में है ये, सॉरी कुरान में नहीं, ये हदीस में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब काफिर दुनिया से कूच करने लगता है और आखिरत की तरफ रवाना होता है, तो उस वक़्त क्या होता है इसके साथ, उसकी तरफ स्याह चेहरे वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब तुम फरिश्तों को मांगते थे ना, तो ये लो फरिश्ते आ गए, इतने भयानक शक्लों वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं, और उनके पास टाट का कफन होता है, और वो उसे हद्दे निगाह के फासले पर बैठ जाते हैं, जहां तक उसकी नजर जाती है ना, उसको वही स्याह चेहरे नजर आ रहे होते हैं। फिर मलकुल मौत आता है और उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता है, ए खबीस रूह निकल और चल अल्लाह के गुस्से की तरफ, उसके गजब की तरफ। उस वक्त रूह जिस्म के अंदर जाती है और फरिश्ते उसे इस तरह बाहर खींचते हैं जैसे कांटेदार लोहे की सीख गीली ऊन से निकाली जा रही हो। कांटेदार लोहे की सीख अगर आप कभी डालें, गीली ऊन हो ना, तो वो ऊन को चीरती हुई निकलती है, रेशा रेशा कर देती है। फरिश्ता इसकी रूह निकाल लेता है तो दूसरे फरिश्ते लम्हे भर के लिए भी उसे मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उसे टाट के कफन में लपेट लेते। रूह जमीन पर किसी मुर्दार से उठने वाली बदतरीन सड़ांट जैसी बदबू इस रूह से आ रही होती है। फरिश्ते इसे लेकर आसमानों पर चढ़ते हैं, जहां कहीं इनका गुजर होता है, मुकर्रब फरिश्तों पर होता है, तो वो कहते हैं, ये खबीस रूह किसकी है। जवाब में वो कहते हैं, ये फलां बिन फलां की है, ये गंदी रूह फलां की है। नहीं, ऐसा अंजाम होता है इनका। तो ये जो तुम मुतालबा कर रहे हो, ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। जबकि मोमिनों का हाल तो इससे बिल्कुल उलट होता है ना, वो अपनी मौत के बाद खुशखबरियां सुनाए जाते हैं, आगे उनका भी जिक्र आएगा। और मैंने आपको कई दफा सूरह सज्दा की वो आयत बताई भी ना, कि जिन्होंने अल्लाह को अपना रब कहा और माना, फिर उस पर जमे रहे, उनके पास अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके पास हमारे फरिश्ते आते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था रब्बुन अल्लाह सुम इस्तकामू, फिर उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की थी ना, फरिश्ते आके इनको कहते हैं, तुम ना डरो ना तुम गम करो, इन जन्नतों में जाने की खुशी मनाओ जिनका तुमसे वादा दिया जाता रहा, हम तुम्हारे वाली हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, तुम जो कुछ चाहोगे पाओगे और जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे वो मौजूद हो जाएगी, बख्शने वाले मेहरबान अल्लाह की तरफ से ये तुम्हारी मेज़बानी होगी। तो मोमिन को तो वो आगे कहते हैं, पाक रूह जो पाक जिस्म में थी तो अल्लाह की रहमत की तरफ चल, वो तुझसे नाराज़ नहीं है, तो फिर रूह क्यों ना जाना चाहेगी। तो कहेगी कि मुझे जल्दी लेके जाओ ना। तो हर नेक हो या बद हो, फरिश्तों को तो सब नहीं देखना, तो इतनी जल्दी क्या है। तुम जब फरिश्तों को देखोगे ना, आज तुम्हें बहुत शौक है देखने का, जब तुम देखोगे तो तुम्हें फिर उनसे कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। और दूसरा, यहाँ पे यकूलू ना हिजरम महजूरा, एक तो मैंने आपको माना बताया ना कि वो खुद कहेंगे काफिर, दूसरा माना क्या है कि फरिश्ते कहेंगे इनसे हिजरम महजूरा, जब ये उनको कहेंगे ना कि हमारे लिए भी जन्नत हो, हमें भी जन्नत दिखाओ, हम भी जन्नत चाहते हैं, तो वो कहते हैं हिजरम महजूरा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगी ये। तुम्हारे लिए हराम है, तुम रोक दिए गए। और दूसरे दुनिया में भी जब आएंगे उनकी जान निकालने के लिए, तब भी फरिश्ते ये कह सकते हैं, बस रुक जाओ, हैंड्स अप, खत्म तुम्हारा काम अब, दैट्स इट। وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا। तो अब इंसान के जहन में ये बात आती है ना, हो सकता है कि इनमें से कोई हो जो बहुत यानी नेक हों, जो बहुत ऐसे हों, बहुत ही इन्होंने नेकियाँ की हों, लोगों की भलाई का बहुत काम किया होगा। जैसे अरब क्या थे, अरब अरबों में ना बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी थी। मिसाल के तौर पे एक उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी जो थी वो मेहमान नवाजी की थी। इस कदर मेहमान नवाज होते थे कि यानी उनके पास मेहमान आ जाता था ना, तो चाहे वो कोई जानने वाला है नहीं है, इस चीज़ की परवाह किए बगैर जो घर में होता वो उठा के ले आते। हत्ता कि कुछ का तो ये हाल था कि वो सारी रात आग जला के रखते थे कि कोई भी काफला गुजरता आता जाता या कोई भी रास्ता भटका हुआ मुसाफिर हो, आग देख ले तो आ जाए, यहाँ पे उसको खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, क्योंकि उस वक्त कोई होटल वगैरह तो थे नहीं। यानी वैसे ही करते थे बस मेहमान नवाजी, ये नहीं, उनको तो खैर कोई इस तरह आखरत में कुछ मिलने का वो नहीं था कि वो कोई उसके लिए कर रहे थे। इसीलिए कयामत के दिन आप अब सोचेंगे कि भाई अगर उनके साथ ये सलूक होगा और फरिश्ते इस तरह उनके जाने निकालेंगे, वॉट अबाउट देयर गुड डीड्स, उनके नेक अमाल का क्या हुआ फिर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तवज्जो की हमने, आए हम तरफ उन तरफ उसके जो उन्होंने नेक अमल किए थे। अमिलु मिन अमल, इनसे मुराद क्या है, अमल कौन से, जो नेक अमल, तो उनको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल गुबार। मैंने आपको बताया, क्या बताया, हबा अन का, ये देखें आप सूरज की रोशनी में देखें जो पार्टिकल्स हैं, ये कोई कुछ वेट रखते हैं, कोई इनका वेट है, या कोई इनकी वजह से कोई कमी बेशी हो रही है, कुछ भी नहीं। इनका वजन करना चाहें क्या निकलेगा, तो इस तरह उनकी बड़ी बड़ी नेकियां हो जाएंगी। अब बाज दफा आपके साथ कोई बहुत ही भलाई का काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, किसी कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनवा देता है, कोई बहुत अच्छा कोई लर्निंग इंस्टीट्यूट बनवाता है, कोई कुछ करता है, और आपसे कुछ लेता भी नहीं है, कुछ मांगता भी नहीं है, तो आपका दिल छोता है कि देखो ना इसको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देखें इसे तो इसका इतना अच्छा नेक अमल है कि इसके ऊपर तो इसको जन्नत मिलनी चाहिए, और देखो ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए कितना करता है। तो बात यह है कि किसी भी नेक अमल की एक्सेप्टेंस के लिए, कबूलियत के लिए जो शराइत है ना, उनमें एक है ईमान। ईमान की शर्त है, ईमान के बगैर तो कोई भी नेक अमल कबूल है ही नहीं। और फिर क्या है, इखलास, कि वो सिर्फ अल्लाह की खातिर किया जाए, इखलास होना चाहिए उसके अंदर। अल्लाह के लिए नहीं किया गया तो फिर वो अल्लाह ताला क्यों कबूल करें, जब किसी ने किया ही नहीं इसलिए कि मैं अल्लाह को दिखाऊं और मुझे इससे कोई अजर मिले। तो अब हम तो बहुत एडवोकेसी करते हैं ना, जैसे पिछले दिनों मैंने किसी प्रोग्राम में सुना, तो वो जो होस्ट था उस वो डिस्कशन कोई हो रही थी, तो उसने ये कहा कि फलां कोई आदमी है तो उसने लोगों की भलाई का ये इतनी खूबसूरत इतनी बड़ी इन्वेंशन की है, उसने किसी चीज़ के बारे में कह रहा था, देखो इसमें उसने लोगों का कितना भला किया। और उसके बाद वो कहने लगा वो तो जन्नती आदमी है। तो दूसरे ने उससे कहा कि वो जन्नती कैसे हो गया, वो तो मुसलमान भी नहीं है। तो उसने कहा मैं तो नहीं इस बात पर यकीन रखता, ये होंगे मौलवियों के फलसफे, लेकिन मैं नहीं इस बात पर यकीन रखता, जिसने किसी के लिए भलाई का काम किया बस वो जन्नती है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं। तो देखें ये मेरे आपके करने से नहीं है, जिसने अल्लाह की खातिर किया ही नहीं, अल्लाह उसका रिवॉर्ड क्यों दे, खुद बताएं। अच्छा आपके घर में कोई नौकर काम करे ही नहीं, आपका उसने काम किया ही नहीं है, हमसाए का जाके कर रहा है, चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, वो आके आपको कहे जी मुझे इसकी तनख्वाह दे, तो आप कहेंगे नहीं कि तुमने कोई मेरा किया काम, मेरे लिए किया, जब मेरे लिए काम किया ही नहीं है तो फिर मैं किस चीज़ का तुम्हें रिवॉर्ड दूँ। तो जो अल्लाह को मानते ही नहीं सिरे से, उसके लिए करना तो दूर की बात है, जो अल्लाह के लिए नहीं करेगा उसको भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो अल्लाह को मानता ही नहीं है, जाहिर है वो उसके लिए काम कैसे कर सकता, वो तो उसने बिलीव ही नहीं कभी रखा, ये बिलीफ ही नहीं है उसका कि अल्लाह है, या उसका बिलीफ ही नहीं है कि अल्लाह हमारा रब है, वो तो औरों को मानता है, उनकी पूजा करता है, तो अल्लाह ताला फिर क्यों उसको दे? वो जाए जाके उन्हीं से ले जिनके लिए उसने किया है। वो क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला फरमा देंगे कि जिनके लिए तुमने किया अल्लाह हर शरीक से पाक है, जाओ जिसके लिए तुमने किया उसी से जाके लो। तो एक तो बात यह है कि जिसका ईमान नहीं है ना, उसके नेक आमाल चाहे कितने ही हों, कभी कभी इतने हम वाकई मैं खुद मुतासिर होती हूँ इतनी इनकी चीज़ें देख के कि अल्लाह अकबर, ना इन्होंने किसी से कोई पैसे लिए, ना किसी की खातिर की, यानी लोगों की खातिर किया कि हमें वॉट एवर उनका रीज़न होगा, उनको शौक़ होगा किसी की खैर और भलाई के काम करने का, लेकिन क्या ये सारे हबाम मंसूरा बन जाएंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा इसका उनको, कितनी बड़ी हसरत है ना कि वहां पे पहुंचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां के लिए उन्होंने किया ही नहीं। ये तो हम ही वकालत करते हैं ना उनकी कि वहां पे उनको मिलना चाहिए, वो उनसे तो जाके पूछ लो, उनको तो नहीं वहां चाहिए, उन्होंने वहां के लिए किया ही नहीं, तो अल्लाह ताला क्यों दे उनको? लेकिन हमें मुसलमानों को ना बहुत फिक्र रहती है, हम कहते हैं वो उसको जन्नत मिलनी चाहिए, वो तो कह नहीं रहा कि मुझे मिले, ना उसने जन्नत के लिए किया है, लेकिन आप खामखा वकालत करते रहे। तो इन बातों को कहने से पहले और सोचना समझना चाहिए कि इस बारे में जिसने कबूल करना है उसी ने जब कह दिया कि मैंने नहीं कबूल करना ऐसे अमल को, जिसने मेरे ऊपर ईमान ही नहीं रखा, मैं क्यों उसका कबूल करूं और मैं क्यों उसको रिवॉर्ड दूं? अल्लाह के जिम्मे नहीं है उसका अजर, तो वो सारे अमल उसके इतने बड़े बड़े अमल होंगे, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, उड़ जाएंगी सारी। तो ईमान शर्त है और खलूस से नियत शर्त है, खालिस नियत, खालिस नियत ना हुई तो चाहे अब मुसलमान है लेकिन नियत उसकी खालिस नहीं है तो मुसलमान का भी अमल कबूल नहीं होगा। जैसे हमने वो शराब का जिक्र पढ़ा था कि क्या है, या उनके अमाल उस रेत के टीले से उसको मिसाल दी गई जो दूर से पानी की तरह नजर आता है, जिसको देख के प्यासा समझता है कि हाय पानी है, जब वहां पहुंचता है तो सारी उम्मीद टूट जाती है, कुछ भी नहीं वहां पे, वहां पे तो अल्लाह की जात है जो हिसाब लेने के लिए। इसी तरह सिर्फ काफिर के ही अमल जाया नहीं होंगे वहां पे, मुसलमानों के भी अमल जाया होंगे, और कौन से मुसलमानों के, जब खलूस नियत ना हो या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ना हो, खुद ही से अपनी तौर पर ईजाद किए हों। और इनमें ठीक है ये देखना तो आसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं, सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है ना वो है नियत का इखलास। बहुत सारे नेक अमल भी उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे जिनके पास तहामा के पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, तहामा कुछ पहाड़ों का नाम है, तहामा के पहाड़ों जितनी नेकियां होंगी, यानी इतना नेकियों का बड़ा ढेर होगा कि नेकियां पायल अप होते 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 पहाड़ के बराबर हो जाएंगी। हत्ता कि जब उनको लाया जाएगा तो अल्लाह ताला उनकी नेकियों को हबा मंसूरा कर देगा, फिर उनको दोजख में डाल देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। तो सालिम ने कहते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हों, ये बताएं वो कौन लोग होंगे? आपने फरमाया वो लोग नमाज पढ़ते होंगे, रोजे रखते होंगे, नींद से बेदार होके रात को कयाम करते होंगे, लेकिन जब इनके ऊपर कोई हराम चीज पेश की जाए तो वो उस पर उछल पड़ेंगे, यानी हराम को कबूल करने वाले, अल्लाह ताला इनके नेक आमाल को जाया फरमा देगा। हराम हलाल की तमीज ही नहीं रखते, हराम के ऊपर ऐसे उछल के पड़ जाते हैं, हराम के ऊपर ऐसे यानी मर मिटते हैं, हराम का ऐसे लालच रखते हैं, हालांकि नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कयाम करते हैं, हराम की फिक्र नहीं है, हराम खाए जा रहे हैं, हराम लिए जा रहे हैं, हराम देखे जा रहे हैं, हराम सुनते हैं, हराम उनकी जिंदगियों में शामिल है, जिस चीज़ को रब ने हराम कह दिया वो बोलते हैं। हराम सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, कोई भी हराम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो यानी मतलब क्या हुआ कि वो हराम चीजों और हराम कामों को हलाल समझते हैं। तो देखें ये कितनी
अल्लाह की तरफ से, यानी एक वो है कि जो हराम को अपने ऊपर हलाल कर लेता है, अल्लाह ने हराम किया है, चाहे वो चीज़ है खाने की है पीने की है या काम है करने का, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया वो उसको हलाल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने हलाल किया हुआ था ज़िंदगी में, तो आज देखो इतनी बड़ी बड़ी नेकियां उनकी ज़ाया हो गई, पहाड़ों जैसी नेकियां भी कबूल नहीं। हाँ, हमारे जहनों में क्या बात होती है, हम समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में कि जो हमने नेकियां कर लिया ना उन्होंने कभी नहीं जाया होना, वो वैसी की वैसी रहेंगी। इसीलिए हम हर वक्त गिनते ना, हमने इतनी नमाजें पढ़ ली, इतने रोजे रख लिए, हमने उम्रे पता है इतने किए हैं, और कुरान हमने इतनी दफा ख़त्म किया हुआ, क्योंकि हम कभी हमारे जहन में आता ही नहीं है कि कभी नेकियां भी जाया होती हैं। मगर आप देख लें इस हदीस से, हराम से इतनी बड़ी बड़ी नेकियां, तहामा पहाड़ बराबर भी होंगी तो उनका भी कोई वजन नहीं निकलेगा, और अल्लाह ताला को जरा भी परवाह नहीं कि किसी की नेकियों को खत्म कर दे, बस जाओ। ये तो देखें अभी हमारे पास रिजल्ट कार्ड ही नहीं है, तो हम फख्र किस बात पे करते हैं, पता नहीं है कबूल हो भी रही या नहीं है, इनका कोई वजन लगेगा भी या नहीं लगेगा, वो होंगी नजर आएंगी वहां पे, लेकिन आपने कभी इन इन ये जो गर्द है इसका कभी कोई वेट देखा है? इस गर्द का आप ढेर भी लगा दें, वेटलेस है, कितने सारे जर्रे हैं, देखिए आपको मिलियंस मिलियंस जर्रे, मेरे ख्याल हम गिन तो नहीं सकते, ये जो हमारी सिर्फ एक खिड़की से हमारी आ रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, हम इन जर्रों को गिन नहीं सकते, इतने सारे हैं, मिलियंस हैं। लेकिन हाथ से ऐसे करें, आप पकड़ने की कोशिश करें, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं दे रहा ये। तो अल्लाह ताला को नहीं परवाह है क्या? आप इतने बड़े बड़े अपने खुद जो इसको हम बड़े बड़े काम कह रहे हैं कि वो उनको ऐसे हवा में उड़ा दे और वो वेटलेस हो जाए, वो चाहे तो आपके खजूर का एक खजूर के सदके को, वो भी हदीस में आता है ना, उसको ओहद पहाड़ के बराबर कर दे, और चाहे तो हवा मंसूरा बना दे, फर्क कहाँ पड़ा? अगर मुसलमान है तो एक का तो पता चल गया ना, इसका ईमान ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो पता ही है कि उसकी तो ऐसे उड़ ही जानी है, लेकिन जो मुसलमान है, कितनी बड़ी हसरत है ना उसके लिए कि मुसलमान है और फिर भी उसकी नेकियां ऐसे उड़ गई, क्योंकि नियत खालिस नहीं थी। नेकियां करने की कोशिश तो सारे ही करते हैं, सबके कुछ ना कुछ सब ने जमा किया हुआ, मगर नियतों का फर्क अजर में फर्क डालेगा, रवैयों का फर्क, सबकी नेकियों को डिफरेंट डिफरेंट वेट सबकी नेकियों के होंगे, सब इक्वल नहीं हो सकते, जो मैं कर रही हूं और जो आप कर रही हैं इक्वल नहीं हो सकता, डिपेंड करता है आपने उसको कितने अच्छे तरीके से किया, आपकी नीयत क्या थी और मेरी नीयत क्या थी। हो सकता है कि मेरी नीयत में कोई रियाकारी आ गई हो और मेरा बड़ा सारा अमल जो आपको बहुत बड़ा नजर आता है वो वेटलेस हो जाए, उसका जीरो वेट हो जाए, हो सकता है आपका छोटा सा अमल हो और वो ओहद पहाड़ जितना हो जाए, हम क्या कह सकते हैं? तो आप आज भी देखें, हम सारे कोशिशें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं हम में से कि नेकी की तरफ आते हैं, लेकिन उनको दूसरे खींच खींच के लेके आते हैं, दूसरे उनको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, वो आ जाते हैं नेकी कर लेते हैं, लेकिन आप देखें उनकी नेकी का कैसा क्या वेटेज होगा। आप थोड़े से, मैं आपके सामने ना सिचुएशंस रखती हूँ, फिर आप खुद देखें हम इंसानी तौर पे ही होके क्या इनको मार्क्स देते हैं, तो फिर आप देख लेना कि अल्लाह के यहाँ क्या मार्क्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है उसको आप खींच खींच के लाती हैं, क्लास में लेकर आती हैं, आओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितने उसको कॉल्स करते हैं, फिर वो आते ही हैं, फिर जरा सी उनके शान के खिलाफ कोई बात हो जाए तो कहते हैं ये लें पकड़े अपना काम, हम जा रहे हैं, बस हम नहीं ये कर सकते, हम नहीं पढ़ेंगे आप आज से, क्योंकि बस ये क्यों कहा गया, ये क्यों बात कही गई। तो इसका मतलब है कि जब तक उनकी शान में कोई बात नागवारी की ना हो, तब तक तो वो नेकी करेंगे, तब तक तो वो आएंगे हिस्सा लेंगे, जब उनकी शान के खिलाफ जरा सी भी बात हो जाए तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं।
उसकी आप उसको क्या मार्क्स देती हैं? अल्लाह की खातिर तो नहीं करते ना, फिर तो अपनी नफ्स की सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। ऐसों की कदर तो इंसान भी नहीं करता तो अल्लाह क्या करेगा? फिर कुछ लोग हैं जो नेकी करते हैं, सिंसियर भी होते हैं, मगर उनको मुसलसल पुश चाहिए होता है। हर वक्त धक्के स्टार्ट के बगैर वो चलते ही नहीं। वो एक गाड़ी होती है ना, वो हर जगह जाके रुक जाती है, थोड़ी सी देर जाती है आगे जो रुक जाती है। कभी भी आप लॉन्ग रूट पे उस गाड़ी को नहीं चलाते। क्यों? आप कहते हैं इसका क्या पता, मैंने तो 2-3 घंटे के सफर पे जाना है, ये गाड़ी बीच में ही रुक जाएगी। तो अल्लाह ताला उनसे बड़ा काम नहीं लेते, क्योंकि वो धक्के स्टार्ट लोग हैं। बड़ा काम अल्लाह ताला उन लोगों से लेते हैं जो धक्का स्टार्ट नहीं होते, जो जिस जो रिलायबल पीपल होते हैं। वो धक्के स्टार्ट हैं। अगर किसी ने कॉल कर दिया या उनके ऊपर कोई चेक है या टीचर सामने है, तो फिर तो काम करेंगे। पुश पुश चाहिए होती है हर वक्त। हर वक्त उनको मोटिवेशनल लेक्चर चाहिए होते हैं। अगर मोटिवेशन मिल गई उस दिन, बड़े जोशो खरोश से खड़े हो गए, और आज तो बस मैंने तीर मार देने, और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर हवा निकल गई। टीचर शहर में मौजूद है तो बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, टीचर नहीं है तो फिर आप क्यों काम करना है? आप आराम से बैठे, खुद ही आप मार्क्स दें कि आप इनको क्या मार्क्स देंगी? कुछ सोचे ना, सोचिए आपको रखा जाए कि ये इनको जरा चेक करें, आप इनको नंबर लगाएं, तो आप क्या नंबर लगाएंगी ऐसे बंदे को? और ऐसे बंदे से अल्लाह ताला बड़े काम नहीं फिर लिया करता, फिर वो छोटे छोटे काम ही सारी जिंदगी करते रहते, क्योंकि वो धक्के स्टार्ट हैं। अच्छा, फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं, और सुभान अल्लाह, मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि वो इस क्लास में भी हैं कुछ ऐसे लोग। वो गुमनाम लोग हैं, ना उनका कोई जिक्र आता है, ना वो बढ़ बढ़ के अपने कारनामों की लिस्ट हर वक्त बताते रहते हैं। वो बस खामोशी से काम करते रहते हैं। वो हम सबसे ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको कोई पुश करने वाला नहीं है, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है, कोई उनको शाबाशें देने वाला नहीं है। कहीं है ना, कोई शाबाश के मोहताज है? उनको शाबाश दी तो वो उनके लिए धक्का है, शाबाश ना मिली तो धक्का नहीं है, बस फिर ठीक है, रुक गए। तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, किसी ने उनको बार बार फोन नहीं किया, किसी ने उनको रिमाइंड नहीं कराया कि प्लीज ये काम कर दें, ये किसी ने उनको ये भी नहीं कहा है कि ये आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बस वो खुद ही कर रहे हैं। उनको शायद ये पता है कि हमने करना ही है, खुद ही करते चले जा रहे हैं, और खामोशी से। कभी हमें आके पता चलता है कि अच्छा, ये लोग भी कहीं काम कर रहे हैं। जब पता चलता है ना, फिर मुझे खुद भी नहीं पता होता कि ये कुछ ऐसे लोग हैं। अब वो उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है, तो मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आखरत में सब हैरान रह जाएं कि अच्छा, ये भी लोग थे, ये भी हमारे साथ के ही लोग थे, ये जो इतना काम कर रहे थे। अल्लाह इतना बड़ा इनको अजर देना। बाज़ लोग बातें बहुत करते हैं और दूसरे के कामों को भी बहुत डिस्कस करते हैं, फलाना ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, फलां वो कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिनको दूसरों की कोई परवाह नहीं, वो लगे हुए अपने काम में, क्योंकि जिसने काम करना है ना, उसको ये देखने की फुर्सत नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो ये कर रहा है, वो फलाना वो कर रहा है, फलाना वो, भाई आप अपना तो काम करो। ये आपको क्या क्या आपको फायदा मिलेगा इस चीज से कि वो क्या कर रहा है और वो क्या नहीं कर रहा? तो ये लोग खामोशी से काम किए चले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि आप किसको ज्यादा नंबर देंगे? आपको किसका काम देख के सबसे ज्यादा खुशी होगी? फिर जब आप इन सब को देखते हैं, अब आप ऐसी मसलन पोजीशन पे हैं कि आपको सबके काम पता चल रहे हैं, जितने जितने इंसानी हद तक हो सकते हैं, आपके दिल में सबसे ज्यादा कदर किसकी आएगी? आप किसको सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे? तो ये तो हम इंसान हैं छोटे से। अब सोचें कि जिस रब की खातिर वो काम कर रहे हैं, उसको उनकी कितनी कदर आएगी ना। और वो सब कोई देख रहा है कि कौन है जिनको पुश चाहिए, कौन है जो बार बार रुक जाते हैं। टीचर नहीं देख सकता, वो भी इंसान ही है, लेकिन अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह की खातिर चलने वाले होते हैं ना, उनको कोई पुश नहीं चाहिए होती, उनको कोई धक्का नहीं चाहिए होता, उनको हर वक्त किसी का दर्स नहीं चाहिए कि कोई दर्स देगा तो हम चलेंगे, दर्स नहीं सुना तो बस छोड़ो, अब क्या करना है। जिस दिन सुन लिया उस दिन बहुत वो हो गई, जिस दिन नहीं सुना बस थोड़े दिन गुजर गए तो अब छोड़ छाड़ के बैठ गए। और कईयों को अपनी ईगो का इतना मसला होता है कि वो अपनी ईगो की उस पे ना कोई हर्फ आए उसके मुताबिक काम करते हैं। जब तक ईगो पे कोई हर्फ नहीं आता वो चलते जाते हैं। जब ईगो पे हर्फ आ गया तो वो अल्लाह की खातिर काम कर रहे थे क्या, या अपनी ईगो के लिए? फिर कौन बड़ा हो गया? कब तक काम करेंगे वो? और अल्लाह ताला दिखा देता है, सामने आ जाते हैं ऐसे लोग भी। कौन किस चीज की खातिर काम करता है ना, दुनिया में ही वाजे हो जाता है। कुछ लोग तारीफों के लिए काम करते हैं, तारीफ मिले, शुक्रिया मिले, शाबाश मिले तो बस काम काम, बहुत अच्छा काम। तारीफें मुनि, अब तो किसी को पता ही नहीं हम इतना काम करते रहते हैं, और इन्होंने तो हमारा कभी नाम ही नहीं लिया। नहीं, लोगों का भी, इंसानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आज तक हमारा कभी नाम ही नहीं आया? तो देख लें फिर, आपको दुनिया में फर्क पता चल जाएगा, आखिरत में जाके तो बड़े बड़े फर्क होंगे ना। दुनिया में ही अल्लाह ताला दिखा देता है। तो देखो कौन किस तरह से काम कर रहा है, और अल्लाह कदर बढ़ा देता है, उनकी इज्जत बढ़ा देता है, खुद ब खुद अल्लाह बढ़ाता है। वो छुपा के काम कर रहे थे, अल्लाह जाहिर कर देता। तो याद रखें कि जो नियत में इखलास है ना, वो पता है कैसे है? जैसे टायर में हवा होती है, और टायर आपके पास कितना भी उम्दा टायर, कितना भी महंगा टायर है, उसमें अगर हवा नहीं है ना, वो किसी काम का नहीं है। तो अगर आपके काम में इखलास नहीं है, वो अल्लाह की खातिर नहीं है, तो वो बिल्कुल उस टायर की तरह है जिसमें से हवा खत्म हो चुकी है, पंक्चर पंक्चर हो चुका है, वो कोई काम नहीं देगा। तो हबा मंसूरा, सबसे तो दुख वाली बात है कि ये वो नेक आमाल है। एक तो दूसरे आमाल तो गुनाहों की तो नहीं बात हो रही, ये नेकियां हैं। कितनी मुश्किल है नेकी करना ना, एक एक नेकी करना, उसको जमा करना आसान नहीं है। आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, या आप जिक्र करते हैं, या आप रोजा रखते हैं, या आप उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, सिला रहमी करते हैं, किसी को माफ करते हैं, किसी साथ अच्छा इखलाक करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ लगता है, एफर्ट लगती है, लेकिन सारी एफर्ट्स जीरो जीरो हो जाएंगे। जो सिला रहमी इसलिए करते हैं कि देखें, इसलिए कर रही हूं कि रिश्तेदारों में मेरा नाम हो, इसलिए कर रही हूं कि तो फलाने ने भी मेरा किया था, इसलिए मैं भी चलो उसको कर दूं, तो ये अदले के बदले हैं, यानी ये इनका कोई भी नहीं अजर मिलेगा। कुछ लोग बहुत खाना खिलाते हैं, मगर उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अल्लाह को खुश करना नहीं। कभी होता है कि हस्बैंड को बहुत पसंद है कि उनके घर वालों की दावत की जाए, कभी ससुराल में पोजीशन बनाने के लिए, कभी किस तरह की किसी चीज़ के लिए, कभी ये कि चलो इनसे कल को कोई काम वाम पड़ेगा, कभी इसलिए कि आज हम बुलाएंगे तो कल को ये भी हमारी दावत कर लेंगे। तो इसका भी नहीं कुछ अजर। कोई लोग लोगों की ताज़ियत, तो लोगों के पास ताज़ियत करने या जनाजे पे इसलिए जाते हैं कि फिर वो कहेंगे कि फिर आए नहीं तो बातें बनेंगी। तो इन इनका तो कोई वजन नहीं होगा, आपने तो अल्लाह की खातिर नहीं किया। और हमारे कितनी सारी अमल हैं जिनको हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये नेकियां हैं, लेकिन हमारी नियत है ही नहीं कि अल्लाह से हमें इसकी इसका कोई अजर मिले, हम अपने रब को राजी कर लें, और हमें ये शौक हो कि इसकी वजह से अल्लाह मुझे जन्नत दे देना। जब ये आपकी नियत ही नहीं है तो अल्लाह आपको क्यों दे? जब आपकी नियत ये है कि फलां खुश हो जाए, चलो उसका बदला चुका दूं, उसने भी मुझे बुलाया था मैं भी उसको बुला लूं, वो भी हमारे घर में ऐसी फौतगी हुई थी तो वो भी आए थे तो हम भी चले जाएं उनके। तो बताएं जरा कि ये तो सारे हम अदले बदले ही चुकाने में लगे हुए, हम क्या कर रहे हैं? वहां पे जाके इनका कोई भी ना वजन हुआ, जिनको हम आज नेकियां समझ रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा? तो कितना थकता है इंसान, जिस्म को भी थकाता है, जहन भी थकाता है, काम करता है और फिर नेकी जमा करता है। लेकिन याद रखिएगा, इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी नेकियां इसलिए भी हबाम मंसूरा बन जाती हैं क्योंकि उसके बाद आप कोई ऐसा अमल कर देते हैं कि वो नेकी मिट जाती है, तब भी वो वहां पे नजर आएगी लेकिन उसका कोई वेट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे सदका दिया लेकिन उसके बाद एहसान जता दिया, तो ये क्या हो गया? वो नेकी जो होगी उसका अमल जीरो हो गया, उसका अजर जीरो हो गया, वो गुबार बन गई। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी नेकियों का वहां पे वजन हो, तो हर काम करने से पहले सोचे मैं क्यों कर रही हूं, अपने अपने आप को ना खुद क्वेश्चन किया करें, अपने आप को खुद अपने अंदर ना सबसे बड़ा डंडा लेके बजाय लोगों के ऊपर खड़े होने के ना, कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है और मैं हर एक की बस वो मैं रहूं कि कोई गलत ना करे, अपने ऊपर रहे डंडा लेके खड़े हो और अपने आप को हर वक्त चेक करते रहें, हर वक्त अपने आप से पूछती रहें। जैसे हम लोगों से पूछने के लिए होशियार रहते हैं, अपने आप से पूछने के लिए होशियार हैं, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रही हो, तुम्हें ये चाहिए, इसके लिए तुम कर रही हो, तुम्हें इस चीज के लिए नहीं करना, तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। उसके बाद आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह नेकी करके भी आप मुतमईन रहेंगे, उसके बाद आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होगा, उम्मीद ही नहीं होगी कि वो कुछ दे आपको, और वो नहीं भी देगा तो आपको तब भी नहीं कोई रंज होगा क्योंकि आपने उसके लिए तो किया ही नहीं था। तो अपने आप को ठीक करके, अपनी नीयत को सही करके फिर काम किया करें। अस्हाबुल जन्नती, और जन्नत वाले, अब ये पहले जिक्र आया ना कि काफरों के साथ क्या अंजाम होगा और उनके आमाल के साथ क्या अंजाम होगा, जरा देखें जन्नत वालों का क्या होगा। आपने जो सिलेक्शन की थी पिछले सबक में, ये मुझे ना आयत बहुत ही पसंद भी है क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत वालों का जिक्र और भी जगह पे कुरान में किया है, कुछ जगह पे ना इतनी खूबसूरत ऐसी बात आती है, कोई हर जगह अंदाज मुख्तलिफ है ना मेरे रब का। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया असहाबुल जन्नत ही जन्नत वाले जो होंगे ना, यौमा इस दिन, उस दिन क्या होगा, खैर मुस्तकर व अहसन मकीला, उस दिन बेहतरीन होंगे ठिकाने के एतबार से और कैलूला करने की जगह के एतबार से भी बहुत अच्छे होंगे, कैलूला करने के वक्त के एतबार से भी बहुत अच्छे होंगे। कैसे कि हमने जब पढ़ लिया कि वो वक्त काफरों के लिए तो बहुत मुश्किल होगा लेकिन ईमान वाले जो होंगे उनके लिए इतना आसान हो जाएगा और इतना मुख्तसर हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे पता है ना कि क़यामत का दिन कितना लंबा है, 50,000 ईयर्स के बराबर है, 50,000 साल के बराबर, और वो 50,000 साल का जो दिन है वो जन्नत वालों के लिए कैसा होगा कि सिर्फ इतनी देर गुजरेगी जितनी सुबह से दोपहर तक, दोपहर होती ना कैलूला, कैलूला किसको कहते हैं, ये ना हो मैं कैलूला कहती हूँ, मकील का मतलब क्या है, कैलूला की जगह, या दोपहर के आराम के बाद जो आराम जो दोपहर के खाने के बाद आराम करते हैं ना उसको कैलूला कहते हैं, नैप टाइम जिसको आप जैसे कह देते हैं। तो जो कैलूला का वक्त तक सुबह से उस वक्त तक जो टाइम होता है ना, इतना सा टाइम लगेगा फिर वो जन्नत में अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे उस वक्त तक। यानी जैसे हम कहें ना कि कोई सफ़र से आए या कुछ है तो हम कहते हैं कि भाई आप इंशाल्लाह दोपहर तक अपने घर पहुंच जाएंगे, तो वो लोग भी कैलूला तक अपने घरों में पहुंच जाएंगे, अपने घरों में, उनके घर कहाँ होंगे, जन्नत में होंगे ना, तो उस तक पहुंच जाएंगे, बाकी लोग अभी हिसाब किताब में ही खड़े हुए हैं, बाकी लोग अभी अपना सब दे रहे हैं सवाल जवाब और ये पहुंच भी गए हैं। जैसे दुनिया में भी ऐसे होता है जिन लोगों के पास बड़ी सिफारिशें होती हैं तो वो पहले ही क्या कहलवा देते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, आपने देखा होगा ना उनके लिए पहले ही लोग खड़े होते हैं, और यहाँ पे तो नहीं होता, हमारे मुल्कों में ज़्यादा ये रिवाज इस तरह से है, एयरपोर्ट वगैरह पे पहले ही जाके उनके लिए लोग खड़े होते हैं, वो जूँ ही जहाज़ से उतरते हैं तो उनको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, वो पहले पहले उनका पासपोर्ट वगैरह लेके स्टैंप करा के उनका सामान लेके गाड़ी में बिठाते हैं, वो घर भी पहुंच जाते हैं, अभी उनके साथ के मुसाफिर बेचारे अभी लाइनों में ही लगे हैं तो घर जाके लेट भी जाते हैं आराम से। तो अल्लाह के यहाँ सिफारिशें तो नहीं होंगी लेकिन ये जो नेक आमाल है ना यही समझ लें सिफारिशें हैं। तो अभी लोगों को बड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में और ये पहले पहले ही जाके सुभान अल्लाह जन्नत में आराम भी कर रहे होंगे, उनका नैप टाइम वहाँ होगा। इब्ने मसूद ने फरमाया कि क़यामत का आधा दिन उस वक्त तक गुजरेगा हत्ता के जन्नती जन्नत में और दोजख़ी दोजख़ में चले जाएंगे। और फिर एक रिवायत में ये भी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मोमिन से इस दिन में तख़फीफ़ की जाएगी यानी हल्का कर दिया जाएगा, हत्ता के उसको फ़र्ज़ नमाज पढ़ने में दुनिया में जितना वक्त लगता था इस पर वो दिन उससे भी कम वक्त में गुजरेगा। सुभान अल्लाह। इससे भी कम वक्त लगेगा। तो वो जन्नत के बागात में जाके कैलूला करेंगे हत्ता के तमाम लोग हिसाब से फारिग हो जाएं। तो इतने लंबे दिन में आप देखें किसी जगह पे इतनी सख्त शदीद गर्मी भी हो, हिसाब किताब भी देना है और सब है। हमें तो ये मुश्किल लगता है कि हम एयरपोर्ट पे लाइनों में खड़े हों, तो ख़ुद सोचें कि वो जो वहाँ पे हिसाब किताब के लिए ज़िंदगी भर के हिसाब किताब के लिए रोके गए होंगे उनके लिए कितना मुश्किल होगा। और इन में से इनको निकाल के आगे आगे चलें, आप आपको आप VIPs हैं, आपको आगे आगे आप जल्दी जल्दी क्लियरेंस आपकी मिलती जाएगी और उस वक्त तक पहुंच भी जाएंगे। इब्ने अब्बास से मरवी है कि कोई साथ ऐसी भी होगी कि जन्नती अपनी हूरों के साथ दोपहर को आराम फरमाएंगे और जहन्नमी शैतानों के साथ जकड़े हुए दोपहर को घबराएंगे। यानी वो जहन्नम में पहुंच चुके होंगे और ये उस वक्त तक जन्नत में पहुंच चुके होंगे। क्योंकि जो जहन्नमी भी कुछ ऐसे हैं ना जो काफिर हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब भी नहीं, वो तो डायरेक्ट सीधे, उनकी भी क्लियरेंस है, वो भी सीधे जहन्नम में, उनसे कोई पूछ किछ नहीं, फौरन बस कोई पूछना क्या है, उनको पूछने की जरूरत ही नहीं, वो सीधे ही जहन्नम में। हजरत इकरमा फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि किस वक्त जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में। ये वो वक्त होगा जब यहाँ दुनिया में दोपहर का वक्त होता है कि लोग अपने घरों को 2 घड़ी आराम हासिल करने की गर्ज से लौटते हैं, तो जन्नतियों का ये कैलूला जन्नत में होगा, मछली की कलेजी इन्हें पेट भर के खिलाई जाएगी। अब ये ना कोई कहे कि मुझे मछली नहीं पसंद या मुझे कलेजी नहीं पसंद, ये तो सिर्फ दुनिया में एक मिसाल के लिए आपको बताया गया, वरना इसकी कोई भी रिजेम्बलेंस आप दुनिया में नहीं कर सकते किसी चीज़ से। तो ये कैसे लोग होंगे कि ये सिर्फ एक दफ़ा अपने रब के सामने पेश होंगे, बस यही आसानी से हिसाब लेना, फिर ये जन्नत में जाकर दोपहर का आराम करेंगे। ये भी आता है कि जितना जोहर से असर तक के दरमियान का वक्त होता है, सिर्फ इतनी देर तक इनको लगेगी वहाँ पे, बस इतना इनके लिए समझ लें कि वक्त इनको ऐसा महसूस होगा, इतना शॉर्ट हो जाएगा। आप देखें ना, कोई वक्त होता है किसी के लिए, वो वक्त इतना, वो ही 1 घंटा होता है ना, किसी के लिए वो इतना मुश्किल हो जाता है कि उसको लगता है एक एक मिनट नहीं गुजर रहा। डिपेंड करता है ना इंसान की कैफियत पे। और जो बड़े आराम में होता है, बड़ी खुशी में होता है, तो वो कहता है लो घंटे का तो पता ही नहीं चला, 1 घंटा गुजर भी गया। और जो मुसीबत में होता है, तकलीफ में होता है, वो कहता है एक एक मिनट गुजारना उसके लिए एक एक साल गुजारने के बराबर हो जाता है। तो क़यामत के दिन 2 लोगों को लाया जाएगा, एक तो वो होगा जो सारी दुनिया का बादशाह था, उससे हिसाब लिया जाएगा, तो उसकी पूरी उम्र में एक भी नेकी नहीं निकलेगी, तो उसको जहन्नुम में दाखिले का हुक्म मिलेगा। फिर दूसरा शख्स लाया जाएगा जिसने 1 कंबल में ज़िंदगी गुजारी, जब उससे हिसाब लिया जाएगा तो वो कहेगा अल्लाह मेरे पास दुनिया में था ही क्या जिसका हिसाब लिया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा ये सच्चा है, इसे छोड़ दो। यानी उसके पास सारी ज़िंदगी में क्या था, सिर्फ 1 कंबल ही तो था, 1 कंबल में उसने ज़िंदगी गुजार दी, तो उससे हिसाब क्या लेना। उसे जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। फिर कुछ अरसे के बाद दोनों को बुलाया जाएगा, तो जहन्नमी बादशाह तो कोयले की तरह हो गया होगा। उससे पूछा जाएगा कहो किस हाल में हो, वो कहेगा नहायत बुरे हाल में और नहायत ख़राब जगह में हूँ। फिर जन्नती को बुलाया जाएगा, उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता होगा। उससे पूछा जाएगा कहो कैसी गुजरी, ये कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और नहायत बेहतरीन जगह में हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ अपनी अपनी जगह फिर चले जाओ। यानी वो इंसान सारी अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ, परेशानियाँ, तंगियाँ भूल जाएगा। वो जो फ़कर में 1 कंबल में जिसने ज़िंदगी गुजारी, उसको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या परेशानियाँ उठाई। और वो बादशाह जिसके पास सारी दुनिया की दौलत थी, वो कोयले की तरह हो क्या होगा, वो कहेगा बहुत बुरे हाल में हूँ, बड़ी बुरी जगह पे हूँ। उसको तो याद भी नहीं होगा कि मैं दुनिया में कभी बहुत ही ऐशो आराम में रहा करता था। एक और रिवायत में आता है सईद बिन सवाफ रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मोमिन पर तो क़यामत का दिन ऐसा छोटा हो जाएगा जैसे असर से मगरिब तक का वक्त, और ये जन्नत की क्यारियों में पहुंचा दिए जाएंगे यहाँ तक कि और मखलूक के हिसाब हो जाएं। तो बाकी लोग अभी खड़े ही रह जाएंगे, इनको आगे आगे ले जाके ये कैलूला वहाँ जाके करेंगे ना, अपने घरों में जाके, अपने महलों में जाके। और इंसान के लिए अपने घर पहुंचना, स्पेशली वो बड़े लंबे सफ़र से आया हो, तो क्या दिल चाहता है? जब आप एयरपोर्ट पे आके खड़े होते हैं, सबका क्या दिल चाह रहा होता है? जल्दी जल्दी यहाँ से फारिग होकर घर पहुंचे और आराम करें, है ना? तो ये तो इतना लंबा सफ़र है, मौत से शुरू हुआ, मौत की सख्ती, फिर कब्र की, जाहिर है कब्र में जो मुश्किलात, उसके बाद हशर के दिन की सख्ती। अब उनका दिल क्या चाह रहा होगा लोगों का, कि बस जल्दी जल्दी अपने मकाम पे पहुँचे, जल्दी जल्दी अपने घरों को पहुँचे। असल हमारा घर तो वही है ना। तो अब उसमें किसी को खड़ा कर दिया जाए और हिसाब किताब लंबा लंबा हो रहा है, कितनी घबराहट होगी ना, कितनी थकन होगी। क्योंकि उस दिन सिर्फ, यानी एक सख्ती जो जो जहन्नुम का है वो तो एक अलग बात है, वो दिन इतना सख्त है जिस दिन ना सिर्फ ये कि सूरज जो करीब होगा उसकी वजह से जो तपिश होगी वो तो अलग है, भूख का भी एक प्रॉब्लम होगा, प्यास का भी प्रॉब्लम होगा। फिर इंसान को जितना ज़्यादा उस दिन अपने जिस्म पे जो कपड़ा है उसकी हाजत होगी, और उसका उसको होगा कि, यानी आप कपड़े की जितनी ज़्यादा उसको उस दिन ख्वाहिश होगी, खाने की होगी, पीने की होगी, ये गर्मी से बचने की होगी, कभी इतनी नहीं हुई होगी। और जिनकी लिस्टें जितनी लंबी होंगी, जितना ज़्यादा साजो सामान जिसके पास ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा दुनिया में जमा किया हुआ है, जितनी ज़्यादा दुनिया में फजूलियात काम किए हैं, उनका हिसाब किताब देना भी तो सोचे ना कि कितना लंबा टाइम लगेगा। तो एक तो उस दिन की घबराहट, उस दिन की वहशत, उस दिन की गर्मी, उस दिन की भूख, उस दिन की प्यास, और ऊपर से हिसाब किताब, तो आमाल का भी हिसाब किताब देना, वो भी एक अजाब है। तो एक जगह आता है, जन्नत में कुछ गुरफे ऐसे हैं, यानी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे कमरे हैं जहाँ, या कुछ ऐसे घर हैं जहाँ नेक लोगों को बसाया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनका हिसाब आसान होगा। तो ये लोग दोपहर के वक्त तक फारिग हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फरमाए। तशक्ककुस समाउ बिल गमाम, फट जाएगा आसमान बादलों के साथ, आसमान बादल के साथ फट जाएगा। व नुज़िल अल मलाइकतु तनज़ीला, और फरिश्ते उतारे जाएंगे, उतारा जाना, फरिश्ते पे दर पे उतारे जा रहे होंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये वो वक्त होगा, एक तो है ना आसमान उस वक्त फटेगा जिस वक्त के, यानी कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा, वो तो सबको मालूम है, सूर फूंका जाएगा और आसमान फटेगा। तो एक तो वो वक्त है, और एक वक्त उस वक्त आसमान फटेगा जिस वक्त के लोगों का फैसला होना है हशर में। ये वाला वो फटना नहीं है जो पहले सूर के वक्त फटना है, बल्कि ये है आसमान का खुलना। आसमान खुलेगा और बादल जो है वो साहिबान की तरह आसमान से आएगा, जिसमें फरिश्ते होंगे और ये फरिश्ते उतरेंगे। ये हिसाब किताब शुरू होने का टाइम है बिल्कुल, जब हशर के मैदान में लोग जमा है, कयामत की हौलनाकियां हैं, उस वक़्त फिर एक नूरानी अबर जो होगा, बादल जो होगा, जिसकी रोशनी से आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, वो उसमें से फिर फरिश्ते उतरेंगे और मैदाने माशर में तमाम इंसानों को घेर लेंगे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक को, सब इंसानों को, जिन्नात को, सबको एक मैदान में जमा कर देगा। तमाम जानवर, चौपाए, दरिंदे, परिंदे, सब मखलूक वहां होगी। अब आपको वो हदीस याद होगी कि सारे जमा है, फिर उनको परेशानी है, इंतज़ार है कब हमारा हिसाब किताब शुरू होगा। कितनी परेशानी सख्त होगी ना, एक तो परेशानी अपने आमाल की सबसे ज़्यादा होगी, हिसाब किताब की होगी, क्या करके लाया हूँ, क्या आगे मुझे पेश आता है, उसके मुताबिक फिर इंसान के पसीने जारी होंगे, तो उस वक्त इंसान कहेगा कि बस जल्दी हिसाब किताब शुरू हो, इंतजार की घड़ियां भी कितनी मुश्किल होती है ना। तो सारी मखलूक वहां जमा होगी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफारिश के ऊपर जब हिसाब किताब स्टार्ट होने लगेगा तो पहला आसमान फटेगा और उसके फरिश्ते उतरेंगे, और वो उतरेंगे तो सारी मखलूक को घेर लेंगे, जितनी मखलूक वहां पे होगी ना उसको घेर लेंगे। आप सोचे कितने फरिश्ते होंगे जो उतनी मखलूक को घेर लें। बाउंड्री वॉल बनानी हो किसी जगह की, बड़ी सी जगह हो तो एक मुसीबत हो जाती है, और ये पूरे मखलूक खड़ी हुई है, इनको घेरने के लिए कितने फरिश्ते चाहिए ना। तो लोग पूछेंगे क्या आप में हमारा रब है, तो वो कहेंगे कि नहीं। फिर दूसरा आसमान फटेगा, उसके फरिश्ते उतरेंगे और लोग पूछेंगे आप में हमारा रब है, वो कहेंगे नहीं। और ये जमीन और आसमाने अव्वल की जो पहले फरिश्ते उतरे थे उनकी तमाम मखलूक की गिनती से भी ज्यादा होंगे ये। फिर उस जो पहला सर्कल उन्होंने बनाया उससे आगे एक और सर्कल बना लेंगे, उनको भी घेर लेंगे। फिर तीसरा आसमान फटेगा, उसके फरिश्ते नाजिल होंगे, और जो पहले दोनों आसमानों के फरिश्ते मिल के और जितने जमीन की मखलूक थी उनको सबको मिला लें तो उससे भी ज्यादा ये होंगे। अब सोचिए अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं, सबको ये घेर के खड़े हो जाएंगे। इनका थर्ड सर्कल होगा, फिर चौथा आसमान फटेगा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां फटेगा। फिर और वो हर एक आसमान वालों से क्वेश्चन करते रहेंगे कि क्या आप में हमारा रब है। फिर जब सातवां फटेगा तो हमारा रब अज्जा व जल बादल के साए में तशरीफ लाएगा, उसके इर्द गिर्द बुजुर्ग तर पाक फरिश्ते होंगे जो सातों आसमानों और सातों जमीनों की कुल मखलूक से ज्यादा होंगे। इन पर सींगों जैसे निशान होंगे, वो अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। इनके तलवे से लेकर टखने तक का फासला 500 साल का होगा, और टखने से घुटने तक कभी इतना ही, और घुटने से नाफ तक कभी इतना ही, और नाफ से गर्दन तक कभी इतना ही, और गर्दन से कान की लौ तक का इतना ही, और इसके ऊपर से सर तक का भी उतना ही फासला होगा, 500 साल की मसाफत का। और ये जब सोचेंगे क्या सीन होगा कि आसमान फट गया और अब फरिश्ते उतरते जा रहे हैं, और जब वो फरिश्ते उतरे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है, तो चार की तस्बीह होगी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला हिल्मिका बादा इल्मिका, कि सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह तू पाक है, तू काबिले तारीफ है, इस वजह से तेरी तारीफ किस वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह अला हिल्मिका बादा इल्मिका, कि तू अपने इल्म के बावजूद कितना बुर्दबार है, कितना हलीम है, लोगों पर तेरा कितना सबर है कि तू उनको नहीं पकड़ता बावजूद इसके इतने तुझे इल्म है। अब पता भी है उसको कि ये लोग यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद वो इनकी गिरफ्त नहीं कर रहा। देखें आप, सोचा आपने कभी? एक तो वो है ना जिसको पता ही नहीं है, अब मुझे पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं तो मुझे क्या पता कि मैं क्या आपको पूछूं। एक वो है जिसको एक एक बात का पता है फिर भी वो पकड़ नहीं रहा, जो उसका हिल्म है ना। फिर वो चार जो होंगे, बाकी चार, वो तस्बीह कर रहे होंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका लकल हम्दु अला अफविका बादा कुदरतिक, कि ए अल्लाह तू पाक है, अपनी सारी तारीफों के साथ तेरे लिए ये सारी तारीफ है, किस वजह से, कि अल्हम्दुलिल्लाह अला अफविका बादा कुदरतिक, कि अल्लाह कुदरत के बावजूद, इसके बावजूद कि तू पकड़ सकता है, पकड़ने की कुव्वत के बावजूद तू माफ कर देता है। एक तो है वो पकड़ ही नहीं ना सकता, उसके अंदर ताकत ही नहीं है किसी को पकड़ने की, किसी को सजा देने की, उसके ऊपर जुल्म हो भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। एक है वो जो पकड़ सकता है, पकड़ने की कुव्वत रखता है, उसके बावजूद वो कहता है जाओ जा, मैंने माफ कर दिया तुम्हें, तो तेरी अल्लाह इसलिए तारीफ है। और सोचे वो सीन के जिस वक्त ऐसी तस्बीहात के साथ अल्लाह का अर्श नाजिल हो रहा हो, उसको देख के अहले माशर की आंखें पड़ जाएंगी और जिस्म कांप उठेंगे, दिल लरज जाएंगे। अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त अल्लाह अज्जा वजल मखलूक की तरफ उतरेगा तो दरमियान में 70,000 पर्दे होंगे, लोग अभी अल्लाह को देख नहीं सकेंगे। अल्लाह को देखेंगे तो वो खुश नसीब ना जो जन्नत में जाएंगे, लेकिन अब इस वक्त अल्लाह तआला नजूल फरमाएंगे तो उसके आगे 70,000 पर्दे होंगे, बाज नूर के और बाज जुल्मत के। उस जुल्मत में से एक ऐसी आवाज निकलेगी जिससे दिल पाश पाश हो जाएंगे।
तो अल मुल्क यौमा इज़िन अल हक लिर रहमान, उस दिन बादशाहत सिर्फ रहमान के लिए होगी, जो बरहक है। हक है वो, उसके लिए सिर्फ बादशाहत होगी। जैसे फरमान है कि उस दिन कहा जाएगा लीमन अल मुल्क अल यौम, आज मुल्क किसके लिए? सिर्फ अल्लाह गालिब और कहार के लिए। सही हदीस में है ना कि अल्लाह ताला आसमानों को अपने दाहिने हाथ से लपेट लेगा और जमीनों को भी अपने दूसरे हाथ में ले लेगा, फिर फरमाएगा मैं मालिक हूं, मैं फैसला करने वाला हूं। अब कहाँ है जमीन के बादशाह, कहाँ है वो मुतकब्बिरीन? वो दिन काफरों पर, वकाना यौमन अल काफिरीन असीरा, वो दिन काफरों पर बड़ा भारी होगा, बड़ा मुश्किल दिन होगा, बहुत सख्त होगा, बेहद मुश्किल दिन। एक तो दिन इतना लंबा, उसकी लंबाई इंसान को परेशान कर देगी, क्योंकि 50,000 साल का दिन तो बहुत लंबा होता है ना। ऊपर से उसकी भूख, ऊपर से प्यास, ऊपर से इंतजार ही इंतजार, ऊपर से लोग एक दूसरे के साथ क्रैम्प्ड अप हुए हैं, चिपके हुए हैं साथ साथ। आप तो यहाँ पे थोड़ा सा रश होता है, आप घबरा जाते हैं कि अरे रश के अंदर हमें सांस नहीं आता, और रश के अंदर हमें ये हो जाता है, और हम हज पे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे रश होता है। सोचिए जिसमें सारी मखलूक खड़ी होगी और सिर्फ दो पाँव रखने की जगह हो, सिर्फ दो पाँव, बैठने की भी नहीं जगह होगी क्या? आप चलो इंतजार में लोग ज्यादातर यही करते हैं ना, नहीं तो और कुछ नहीं होता, जमीन पे ही बैठ जाते हैं कि कोई और नहीं भी जगह मिली, कोई कुर्सी नहीं भी मिली, कहते जमीन पे ही बैठ जाओ, क्या करें, खड़े खड़े टांगे थक गई। तो वो कितना लंबा दिन उसमें खड़े रहना है, और सूरज इतनी करीब है, ऊपर से पता है कि आज मिलने वाला है मुझे रिजल्ट मेरे अमाल का, तो हाल क्या होगा फिर? असीर तो होगा काफिरों के लिए, उनके लिए कैसा होगा आप बताएं, जो कुछ करके ही नहीं लेकर आए, जिनके पास कुछ है ही नहीं, खाली हाथ ही चले आए हैं, अब जाके होश आया कि कुछ करके लाना चाहिए था, उनके लिए कैसा होगा आप बताइए? जिनको अब होश आया कि आए जिंदगी तो हमने सारी ऐसे ही गंवा दी, अल्लाह उसमें तो हमें इसकी तैयारी करनी थी, हम किधर भूले रहे, उनके लिए कैसा होगा ये बताएं, उनके लिए कैसा होगा जिन्होंने कभी समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि हमें अल्लाह की तरफ आना है, हमें इस दिन की तैयारियां करनी है, हमें जन्नत के लिए अमल करना है, हमें जहन्नुम से बचने के लिए कुछ काम करने हैं, उनके लिए कैसा होगा? तो वो दिन बड़ा सख्त होगा, बहुत सख्त दिन है, और उस दिन बादशाहत अल्लाह की होगी। आज तो दुनिया में आप देखते हैं बादशाह बने हुए हैं, हर कोई फूफा में है अपनी, हर कोई अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा है, कोई खुद को बहुत बड़ा अमीर आदमी समझ रहा है, कुछ को बड़ी पोजीशन वाला अपने आप को समझ रहा है। अपने घर में तो हर कोई अपने आप को बादशाह समझ रहा है, कोई बादशाह नहीं भी है ना, तो ज़मीन पे चलते हुए हर कोई अपने आप को, जिस दिन कोई अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी में बैठ गए, हर कोई अपने आप को समझता है कि आज बादशाह ज़मीन का मैं ही हूँ। ये तो अल्लाह ने थोड़े दिन के लिए कुछ चीज़ें दे दी कि चलो ऐश कर लो तुम भी, इसके अंदर रह के तुम क्या मुझे फिर भी याद करते हो, नेमतों में रह के ही तो तुमने इम्तिहान के लिए तुम्हें दी, लेकिन इनके अंदर इम्तिहान था ये भूल के वो इंसान खुद को बादशाह समझने लगा। उसके बाद अल्लाह ने कहा आना तो मेरे पास ही है ना, ये भूल के जिस इंसान ने जिंदगी गुजारी, देखिए आप खुद सोचे ना, मौत की सख्तियों और बुरे खात्मे के बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए, कब्र के बारे में भी फिक्र करनी चाहिए, अजाब कब्र से भी हमें पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक और मुश्किल मरहला वो है जो सूर फूंके जाने का है, जब कब्र से उठ के इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना है उसको, अपनी जिंदगी का इंसान खुद ही, आज खुद हम अपना हिसाब लेने लगे ना, तो कई अमल ऐसे जहन में आते हैं कि बहुत सोचने के बावजूद नहीं समझ आती कि इसका हम क्या जवाब देंगे। फिर पुल से रात हो गया, फिर अमाल का जो वजन करना है वो हो गया, फिर वो जो इंतजार के दौरान जो हालात पेश आने वाले हैं, ये सारी इसकी तैयारी करनी जरूरी है, लेकिन हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हम गर्मियों और सर्दियों की
मौसम की तो फिक्र करते हैं, अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं, उससे पहले कोट भी खरीद के रखेंगे, उससे पहले स्वेटर वगैरह निकाल लेंगे, गर्म कपड़े निकाल लेंगे कि सर्दी से बचना है। गर्मियां शुरू होने लगती हैं तो गर्मी से बचने के लिए गर्मी के कपड़े निकाल लेंगे। हम कयामत से ज्यादा तो मौसमों की फिक्र रखते हैं। ये दुनिया में पता नहीं वो मौसम आना भी है हमारे पर या नहीं, लेकिन आप देखिए कयामत की तैयारी से ज्यादा तो हमारी तैयारी दुनिया के मौसमों की हो जाती है। कयामत की तो इतनी भी तैयारी नहीं करते जितनी कि दुनिया में मौसमों से बचने की करते हैं। तो वो दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा और सूर की आवाज से इंसान सहमे हुए होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दिन कैसा होगा, सूरह यासीन में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो यकायक अपनी कब्रों से निकलेंगे और क्या कहेंगे, रब की तरफ दौड़ने लगेंगे और कहेंगे या वैलना मम बाअसना फी मिम मरकदिना, हाय हमारी बर्बादी, किसने हमें कब्रों से उठा दिया, यही तो है जो रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था, आज नहीं ना यकीन आ रहा, उस दिन यकीन आ जाएगा। वो तो बस एक हौलनाक चीख होगी, फिर अचानक वो सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। चुनाचे आज किसी शख्स पर कोई जुल्म नहीं होगा, फिक्र ना करें, जुल्म नहीं होने लगा, जो आपने काम नहीं किया उसको आपके सर पे नहीं थोपा जाएगा, जो किया है बस उसी का जवाब देना होगा। मसला यही तो है कि जो हमने किया है वही तो सही नहीं है, और तुम्हें सिर्फ उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम अमल करते थे। जरा सोचें उस वक्त हमारे दिल की कैफियत क्या होगी जब जमीन और आसमान दूसरे जमीन और आसमान से बदल दिए जाएंगे, जब सब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, उनमें मैं भी होंगी और आप भी, जब रोशनी खत्म हो जाएगी, जब अंधेरा छा जाएगा, जब लोग नंगे पांव होंगे, नंगे जिस्म होंगे, दो कदम रखने की सिर्फ जगह होगी, दूसरों में गड़मड़ होते जाएंगे, भीड़ लगी होगी, एक रश लगा होगा, निगाहें उठी होंगी और दिल टूटे हुए होंगे। जरा सोचें उस दिन की लंबाई, सोचें उस दिन की हौलनाकी, सोचें और अल्लाह के सामने खड़े होने की जो रुसवाई है, जो जिल्लत है, उस दिन फैसले का शिद्दत से इंतजार करने वालों की हालत पे गौर करें। उस दिन की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, फिर जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि या यूहन्नास, ए लोगो, जिस दिन तुम उस जलजले को देखोगे तो क्या हाल होगा, हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, गिर जाएगा उसका हमल, और लोग ऐसे होंगे जैसे नशे में, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, अल्लाह का अजाब भी बड़ा शदीद होगा। तो जो उस दिन से भूला हुआ है, उस दिन को याद नहीं रखे हुए, कितनी बड़ी कितना बड़ा सरप्राइज होगा उसके लिए। जहां पे कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, फिर भी दुनिया के हर जिंदगी के हर छोटे बड़े अमल के ऊपर आज की अदालत में फैसला सुनाया जाएगा। कोई वकील भी नहीं है यहाँ पे, तो छोटा सा मुकदमा हो तो वकील कर लेते हैं, वहां पे कहाँ से वकील करोगे। तब इंसान की अकल मबहूत रह जाएगी, उसके सारे अज़ा पे लर्जा तारी हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है सूरह हिजर में, अल्लाह ताला फरमाते हैं आपके रब की कसम हम इनसे जरूर बाज़पुर्स करेंगे, जरूर सवाल होगा इनसे उन कामों का जो वो करते रहे हैं। इन समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु लाइक कानान हु मसूला, समात बसारत दिल हर एक से जरूर सवाल होगा। तो सही जवाब तैयार करके रखें, आमाल तुलने वाले हैं। फिर जिसके दाएं हाथ में आ गया नामा आमाल, अल्लाह ताला ने फरमाया तो जल्दी उसे आसान हिसाब लिया जाएगा, वो अपने घर वालों की तरफ हंसी खुशी लौटेगा, वो फिर कैलूला करने के लिए जन्नत में अपने घर में पहुंच जाएगा। घर का लफ्ज़ आते ही कितनी एक अपनाइत फील होती है ना, घर पहुंच जाएगा। इतना लंबा सफ़र, जिंदगी डर डर के गुजारी, सारी जिंदगी रब को राजी करने की फिक्र में रहा। वो सारी जिंदगी क्या सोचता रहा कि रब के सामने मुझे खड़े होना है। अल्लाह ताला ने सूरह फजर में इस चीज को बयान फरमाया ना बहुत ही खूबसूरती से। अल्लाह ताला फरमाते कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, जिस दिन जमीन कूट के बराबर कर दी जाएगी, व जाए रब्बु का वल मलकु सफ़न सफ़ा, और तेरा रब खुद आ जाएगा और फरिश्ते सफ़ें बांध कर आ जाएंगे, उतरते जाएंगे फरिश्ते उतर रहे आसमान से, वह जी अयोम इज़िम भी जहन्नम, सारी अदालत तैयार हो रही है ना, फरिश्ते भी उतर गए, रब का अर्श भी आ गया, जहन्नम एक तरफ से लाई जाएगी, तो जे ये आ गई ना जहन्नम, तो यौम इज़ यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, इस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर आज समझ आने का क्या फायदा, क्या फायदा। जो जवाब इम्तिहान देने के बाद याद आए उसका क्या फायदा रह जाता है बताएं। यकूलु, वो क्या कहेगा उस दिन का, उसके उसका जो उसकी जो बात है ना, उसको कोट किया अल्लाह ताला ने यहाँ पे कि उसकी बात उसके मुंह से क्या निकलेगा, उसकी बात देखिए, यकूलु या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, वो कहेगा काश मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ सामान किया होता, हाय काश मैं कुछ करके आता, हाय अल्लाह अल्लाह इस वक्त के आने से पहले हमें कुछ करने वाला बना दे कि हम उस जिंदगी के लिए कुछ कर लें। فَيَوْمَ اِذِن لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد، تو اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد، اور نہ اس کی جیسی پکڑ کرنے والا قید و بند کرنے والا کوئی ہوگا، ایسی نہیں ہوگی کسی کی بھی۔ جو آج ہم اپنے نفسوں کو کھلا چھوڑے ہوئے نا، اس دن بند جائیں گے زنجیروں میں، آگ میں، ستونوں میں، آگ کے ساتھ باندھنے والا اللہ ہوگا اس دن۔ آج ہم اپنے آپ کو باندھ لینا تو اس دن کی آگ سے بچ سکتے ہیں، اس دن کی زنجیروں سے بچ سکتے ہیں، آج زبانوں کو بند کر لیں، آج مصیبتوں پہ صبر کر لیں، آج اللہ کی اطاعت کر لیں، آج اپنی زندگی کو باندھ لیں۔ آج باندھ لیں گے تو کل آزادی ملے گی، اور آج آزاد ہو گئے نا تو کل تو بندھیں گے ہی وہاں پہ، ورنہ بندھنا پڑے گا۔ آپ کہاں بندھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی واپسی یاد دلا دی ہے۔ دیکھیں جس کو یہاں کی امید اور یہاں کے لیے جو کام کرنا چاہے نا، اگر آپ کو پتا ہو کہ پورا سال کام کروں گی تو اس کے بعد یہ لوگ مجھے جاب والے اتنی خوبصورت جگہ پہ ویکیشن پہ بھیجیں گے، تو آپ کے لیے پورے سال کا کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اس کی خاطر کہ میں نے ویکیشن پہ جانا ہے، اور یہ تو ویکیشن نہیں ہے، یہ تو مستقل جگہ ہے، پھر کام کرنا کیوں اتنا مشکل لگتا ہے ہمیں؟ اور سبحان اللہ، جس نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز بندہ مومن کی موت ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ ساری زندگی اس نے دو ہی چیزوں کی تو تمنا کی تھی، جنت کی اور رب کے دیدار کی، وہ بیچارہ ساری زندگی اسی محنت میں لگا رہا، یہ دونوں چیزیں موت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ زندگی میں مارا مارا پھرتا رہا، اس کی محنت کیا تھی، وہ کیوں اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا تھا؟ اللہ وہ دن آئے کہ میں تجھے دیکھ سکوں اور تیری جنت مجھے مل جائے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اب پھر موت کا وقت آئے گا نا، تو پھر اس کو یہ کہا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، اے اطمینان والی روح، ساری زندگی تو نے اس کے لیے محنت کی تھی نا، ارجی الی ربی، تو اپنے رب کی رضا چاہتا تھا نا، چل اب اپنے رب کی طرف، راضیہ تم مرضیا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہو گیا کیونکہ تو اس کی رضا چاہتا رہا نا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے مل گئی رب کی رضا، فدخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں تو شامل ہو جا، فدخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بنا دے۔ या हम बस तेरी रजा में राजी रहें, जिस पे तू राजी उस पे हम राजी, जिसमें तेरी रजा ना हो अल्लाह हम भी उस पे ना राजी हो, हम भी उन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें जिनमें तेरी नाराजगी हो।